नमस्कार भारत, आज है 15 दिसंबर दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सीरिया में पूर्वी अलेप्पो के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए हुआ नया समझौता, सरकार के समर्थन वाले हिजबुल्ला लड़ाकों ने ऐसे किसी समझौते से किया इनकार।
5 साल की हिस्ट्री में जो सीरिया में हो रहा है, ये बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है, और मेजर टर्निंग पॉइंट सिर्फ असद के लिए नहीं है, उस रीजनल पॉलिटिक्स के लिए भी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी है।
अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की। दुनिया जहान में सुनिएगा, रूस और चीन के बीच बसा छोटा सा देश मंगोलिया इन दिनों चीन के गुस्से का क्यों कर रहा है सामना।
ये चीज तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम मंगोलिया से दोस्ती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मदद की अपेक्षा वो रखता ही है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सीरिया के विद्रोहियों का कहना है कि पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को निकालने के लिए नया समझौता हो गया है। विद्रोहियों का दावा है कि आम लोग और लड़ाके आज सुबह से बाहर निकलना शुरू करेंगे। हालांकि सरकार के समर्थन वाले लड़ाकों ने कोई समझौता होने से इनकार किया है। अलेप्पो में मंगलवार को लागू हुआ संघर्ष विराम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो में हजारों लोग फंसे हुए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि चीन ने साउथ चाइना सी के 7 बनावटी टापुओं पर हथियार जमा किए हुए हैं। चीन ने कई बार कहा है कि वो विवादित समुद्री क्षेत्र में बनाए गए इन टापुओं का सैन्यीकरण नहीं करेगा, लेकिन वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज की ओर से जारी तस्वीरों से जाहिर होता है कि वहाँ कंक्रीट के षटकोणीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। विश्लेषकों की राय है कि इनका निर्माण ऐसे हथियारों को रखने के लिए किया गया है जिनका इस्तेमाल विमानों और क्रूज मिसाइल का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में किया जाता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। एक दशक से ज्यादा वक्त में ये दूसरा मौका है जबकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 8 साल पहले वैश्विक आर्थिक मंदी के वक्त ब्याज दर 0 के करीब कर दी गई थी। फेडरल रिजर्व की प्रमुख जेनेट येलन ने कहा,
Our decision to raise rates should certainly be understood.
ब्याज दरें बढ़ाने के हमारे फैसले को निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की प्रगति में हमारे भरोसे के तौर पर देखना चाहिए। हमारा आकलन है कि ये प्रगति जारी रहेगी, ये अर्थव्यवस्था में भरोसे का सूचक है। ये थे जेनेट येलेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में जगह दी है। साल 2016 की सूची में मोदी को 9वें नंबर पर रखा गया है। इस सूची में कुल 74 लोगों के नाम हैं। पहले नंबर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नंबर पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक चरमपंथी की मौत हो गई। मारे गए चरमपंथी का नाम बासित बताया गया है। पुलिस के मुताबिक बासित ने 2 महीने पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन की सदस्यता ली थी। श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने बताया,
बुरहान वानी जुलाई में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और उसके रिएक्शन में पुलिस के मुताबिक कोई 89 लोग गायब हो गए हैं और जंगलों का रुख उन्होंने किया है और मिलिटेंट रैंक्स में उन्होंने शमूलियत की है और उनमें से बासित एक थे। 2 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था मिलिटेंट रैंक्स को, उनका ट्रैक हो रहा था, पुलिस सूत्रों ने बताया, उन पे काफी नजर थी। अनंतनाग में एक बस्ती है उसका कॉर्डन किया गया, बहुत ही ब्रीफ एनकाउंटर में वो मारे गए।
ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने कहा है कि 3 साल से जारी गृह युद्ध को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत है। उन्होंने संसद में कहा कि अहम लोगों का एक पैनल बातचीत की दिशा तय करेगा। इसमें उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति रीक मचार का कोई जिक्र नहीं किया। जुलाई में संघर्ष तेज होने के बाद मचार देश से बाहर चले गए हैं। इंटरनेट कंपनी याहू ने कहा है कि इस बात की आशंका है कि हैकरों ने 1 अरब से ज्यादा उपभोक्ताओं के अकाउंट से डाटा चोरी कर लिए हैं। ये साल 2013 का मामला माना जा रहा है। याहू ने एक बयान में जानकारी दी है कि सितंबर में सिस्टम में सेंध लगाने की जो जानकारी दी गई थी, ये मामला उससे अलग है। याहू का कहना है कि जो डाटा चोरी किए गए हैं उनमें नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड हो सकते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक महिला ने बचपन में सुरक्षित रखे गए ऊतकों का इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे को जन्म दिया है। ये अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पिछले 5 साल से गृह युद्ध का सामना कर रहे सीरिया के विद्रोहियों ने जानकारी दी है कि पूर्वी अलेप्पो के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए नया समझौता हो गया है। हालांकि सरकार के समर्थन वाले हिजबुल्ला लड़ाकों ने ऐसे किसी समझौते से इनकार किया है। इससे पहले मंगलवार को रूस और तुर्की की मध्यस्थता में तैयार हुआ संघर्ष विराम समझौता टूट गया था, जिसके बाद लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस और तुर्की की मध्यस्थता में हुए समझौते पर बुधवार को अमल नहीं हो सका। फंसे लोगों को निकालने के लिए आई बसें खाली खड़ी रहीं और मानवाधिकार कार्यकर्ता संघर्ष विराम टूटने और लगातार बम बरसाए जाने की खबरें देते रहे। लेकिन बुधवार देर रात विद्रोहियों की ओर से दावा किया गया कि एक नया समझौता अमल में आ गया है और गुरुवार तड़के से फंसे लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि नए समझौते को लेकर रूस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे समझौते की पुष्टि हो सके। विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने बताया कि समझौते के तहत सिर्फ घायल लोग बाहर जा सकेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस, तुर्की और कतर से कहा है कि वो संघर्ष विराम के लिए कोशिश जारी रखें। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया,
In all of these conversations, the secretary has stressed the need to continue to try to stop.
बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल जिन बातों का ऐलान किया गया था उन पर लंबे वक्त तक अमल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मानवीय मदद मुहैया कराना जरूरी है, लोगों को बाहर निकालना और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुँचाना भी जरूरी है। इसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। वहीं तुर्की ने पुराना समझौता नाकाम होने के लिए सीरिया सरकार को जिम्मेदार बताया है। हालांकि सीरिया और रूस ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान यूजरिक ने पूर्वी अलेप्पो में संघर्ष जारी रहने की निंदा की है। उन्होंने कहा,
The UN is deeply concerned by reports of fighting in Aleppo today, despite the announcement of a ceasefire agreement last night.
संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम समझौते के बाद भी अलेप्पो में संघर्ष की खबरों को लेकर चिंतित है। संघर्ष जारी रहने की वजह से हजारों आम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। फंसे हुए लोगों की सुरक्षा चिंता का मामला है। बाहर निकलने की चाहत रखने वाले लोगों की मदद के लिए हम संघर्ष तुरंत रोकने की मांग करते हैं। ये थे स्टेफान यूजरिक के शब्द। पूर्वी अलेप्पो पर साल 2012 से विद्रोहियों का कब्जा है। रूस के लड़ाकू विमानों की मदद से सरकार ने हाल के महीनों में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में जोरदार अभियान चलाया है। रूसी सेना ने बुधवार को जानकारी दी थी कि विद्रोहियों को शहर के 2.5 वर्ग किलोमीटर हिस्से तक सीमित कर दिया गया है।
ब्यौरा सुना रहे थे वात्सल्य राय। सीरिया के मौजूदा हालात के बारे में हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजल रहमान से और यही पूछा कि सीरिया में शांति क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है।
5 साल की हिस्ट्री में जो सीरिया में हो रहा है ये बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है, और मेजर टर्निंग पॉइंट सिर्फ असद के लिए नहीं है, उस रीजनल पॉलिटिक्स के लिए भी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी है। ये पूरा का पूरा जो है एक ग्लोबल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और पार्टिकुलरली पिछले 1.5 साल से जिस तरह से रशिया का एक्सेशन वहां हो रहा था, और रशिया के एक्सेशन के साथ साथ जो रीजनल फोर्सेज जैसे अपने आप को रिट्रीट कर रही, टर्की ने रिट्रीट किया, सऊदी अरब ने रिट्रीट किया, और इधर तकरीबन 1 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बिल्कुल अपने आप को रिपीट कर लिया था, इस सेंस में कि उनका जो ओवर इन्वॉल्वमेंट था रीजन में वो वहां बिल्कुल इनविजिबल था। अमेरिका में इलेक्शन था, रशियन और टर्की जो है अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी थी वो अपना देख रहे थे, और वो जो सीरिया में जो डिफरेंट कदर ग्रुप का राइस था उसको टैकल कर रहे थे। तो इसमें हुआ ये कि रशिया को पूरा फ्री हैंड मिला, सीरिया को फ्री हैंड मिला, ईरान को फ्री हैंड मिला, हिजबुल्ला को फ्री हैंड मिला, और जो रेबेल फोर्सेस थी वो अपने आप को कमजोर पा रही, जबकि दूसरी तरफ रशियन, सीरियन और ईरानियन जो अलायंस था उनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि बिल्कुल इस सारे के सारी जो अपोजिशन फोर्सेस है उनको आप क्लब कर दीजिए टेररिज्म में। उसमें जो है रशिया ईरान पूरी तरह कामयाब हो गया, तो उन्होंने इस पूरी की पूरी फाइट को उन्होंने बना दिया टेररिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, टेररिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म। इस तरह से मुझे लगता है कि अब जो एक नए तरह का रीजन सामने आएगा, और इस रीजन में जो है रशिया का एक अलग तरह का सेशन होगा। असद इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है एक रशिया के लिए, और ईरान के लिए तो खैर एक पूरी की पूरी ओपन फील्ड है। अगर कोई रियल अगर इस विनर है इस गेम में तो वो ईरान है।
जो इस वक्त वहाँ की जो जमीनी स्थिति है, युद्ध विराम टूट जा रहा है, फाइट बहुत तेज हो गई है, तो अभी तुरंत क्या देख रहे हैं आप?
वो बिल्कुल ह्यूमन कैटास्ट्रॉफिक वहां पे है और ये पिछले तकरीबन 3-4 महीने से 6 महीने से वहां पे है। लेकिन जो अभी के जो हालात हैं वो सीज फायर किससे करेंगे, वहां पे कौन किससे सीज फायर कर रहा है? टर्की बात कर रहा है रशिया से, रशिया बात कर रहा है ईरान से और ईरान बात कर रहा है सीरियन रिजीम से। तो सवाल ये है कि जब 4-5 प्लेयर्स हो और जब सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, उसमें हम एक बहुत ही इमीडिएट किसी सोल्यूशन की आशा करना मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है।
ये थे मध्यपूर्व मामलों के जानकार फजल रहमान। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने प्रधान ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। ये एक दशक से भी ज्यादा समय में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है। इसके साथ ही ब्याज की दर अब 0.5% से बढ़कर 0.75% के स्तर पर पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेनेट येलेन ने कहा कि ये कदम अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए उठाया गया है। खबर की पूरी जानकारी और अमेरिका पर इसके प्रभाव को समझने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात की।
देखिए, देखा जाए तो एक दशक में दूसरी बार ये वृद्धि हुई है। अब तक 0.25 से 0.50 के बीच में थे ब्याज दर, जिसे बढ़ाकर अब 0.50 से 0.75 के बीच में किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि ये अमरीकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूती की ओर इशारा करता है और साथ साथ बढ़ती महंगाई की आशंका भी दर्शाता है। ये जो बुधवार को बयान आया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, उसके अनुसार आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी किश्तों में। यहाँ कई विश्लेषकों का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स दर में कटौती की योजना सामने रखी है और मूलभूत ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारी निवेश की बातें की है, उससे अर्थव्यवस्था की सेहत और बेहतर हो सकती है और साथ ही कीमतें भी बढ़ सकती हैं। बेरोजगारी की दर यहां पर 9 सालों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंची हुई है, शेयर मार्केट उठान पर है और मकानों के जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लोगों की जो क्रेडिट कार्ड्स हैं और एडजस्टेबल रेट वाले मॉर्गेज हैं, उन लोगों को कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन बाकी चीजों पर और कोई फिलहाल बहुत ज्यादा यहाँ पर असर हो उसका अंदाजा नहीं है।
ब्रजेश, भारत जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उन पर क्या असर पड़ सकता है?
देखें, इसका आरंभिक असर तो आज जब शेयर बाजार खुलेंगे भारत में तब नजर आएगा। अंदाजा है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। जानकारों की राय में एक असर इसका ये हो सकता है कि विदेशी निवेशक भारत से अपने डॉलर निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करेंगे, अगर उसमें लगा उन्हें कि ब्याज दर की वृद्धि से ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे रुपया और कमजोर हो सकता है और रिजर्व बैंक शायद भारत में ब्याज दर की कटौती को स्थगित कर दे, इस तरह का आकलन सामने आ रहा है। तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है और कमजोर रुपए की वजह से आयात और महंगे होंगे और सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उस पर असर होगा। निर्यातकों को कमजोर रुपए की वजह से कहा जाता है कि फायदा हो सकता है, लेकिन अभी दुनिया में जिस तरह की स्पर्धा है और मांग में जिस तरह की कमी है उसकी वजह से कोई खास फायदा नहीं होगा। हाँ, जो छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं भारत से आकर और रुपए देकर डॉलर खरीदते हैं, उन्हें आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्हें काफी परेशानी होगी इससे।
वॉशिंगटन से जानकारी दे रहे थे ब्रजेश उपाध्याय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
नागपुर में इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसके बीच कल महाराष्ट्र भर से आए मराठा कुनबी समुदाय के लोगों ने मूक मोर्चा निकाला। कहा जा रहा है कि मराठा मूक मोर्चों की कड़ी में ये आखिरी मोर्चा था, लेकिन फिर भी इसमें वैसी भीड़ नजर नहीं आई जैसी जिला स्तरीय मोर्चों में देखी गई थी। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
दो स्पेशल ट्रेनें और सैकड़ों बसों के बावजूद नागपुर में आयोजित मराठा साइलेंट मार्च में करीब 1 लाख लोग ही दिखाई दिए, जबकि दावा 25 लाख की भीड़ का किया गया था। हमने यवतमाल से आए सुनील कड़ू से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
नहीं, ये प्रातिनिधिक स्वरूप में किया हुआ है। जो वहाँ का जो मोर्चा का आयोजन हुआ ना, वहाँ पे वो समाज के पूरे लोग आ गए। अब कोल्हापुर से या अहमदनगर से पूरे समाज से यहाँ नहीं आ सकता ना, 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे लोग आए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए।
नासिक से आए सुधाकर पाटिल ने इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा विधानमंडल में दिए गए भाषण की ओर इशारा किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने मराठा आरक्षण की अदालत में जारी अब तक की कानूनी लड़ाई पर बयान दिया था और मराठा आरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करने की बात कही थी।
नहीं नहीं मुद्दा तो रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद बोला है आरक्षण देंगे दिलाएंगे, अट्रॉसिटी कायदे में शिथिलता लाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लोगों का भरोसा बैठ गया है अपने को आरक्षण मिलेगा ही ऐसा।
नागपुर के मोर्चे में हर पार्टी के मिलाकर कुल 100 से भी अधिक विधायक शामिल दिखे। जाहिर है पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर भारी तैयारियां करनी पड़ी। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस रंजन कुमार शर्मा,
मोर्चा को हैंडल करने के लिए हमने ड्रोन का यूज किया, ड्रोन से हम पूरे मोर्चा पे नजर रखे हुए थे। इसके अलावा जो है सो हेलमेट पे भी जो है सो कैमरे लगाए गए थे, तो हमने वीडियो कैमरा काफी लगाया। उसके बाद हमारी कमांड कंट्रोल की एक व्हीकल थी, उसके द्वारा भी हमने पूरी नजर रखे हुए थे।
लेकिन बुधवार को मोर्चे के बाद एक अच्छा संकेत भी सामने आया। अब तक मराठा मोर्चा के आयोजक सरकार के मंत्रियों से मिलना टालते रहे थे, अमूमन निवेदन जिलाधिकारी को सौंप दिया जाता था, लेकिन इस बार मोर्चे का नेतृत्व करती लड़कियों ने खुद मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री ने भी मराठा समाज के नुमाइंदों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। उम्मीद है इस चर्चा के बाद मराठा आंदोलन का सिलसिला रुक सकेगा। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी, BBC हिंदी।
और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं। वात्सल्य, तमाम अखबारों के साथ आप स्टूडियो में हैं, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी अमरेश जी, जैसा आपको मालूम है कि पारा गिर रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है
जी।
इस बीच में कोहरा भी घिरा हुआ है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कोहरे के बाद से कि 16 दिसंबर कल है, 4 साल पहले इस दिन
बहुत दुखद घटना
जी निर्भया गैंगरेप हुआ था। 4 साल हो गए, ये तारीख भी लगता है कोहरे में जा रही है, क्योंकि इसके माता पिता का एक इंटरव्यू छापा है दैनिक भास्कर अखबार ने, और उन्होंने बताया है कि 4 साल पहले लाखों लोग साथ थे। इस मामले की सुनवाई अब भी जारी है, और कोर्ट में आज उनके साथ 10 लोग भी नहीं होते हैं
जी।
इसके साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है, आपको मालूम है, एक कार्टून का जिक्र करना चाहूँगा जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। ये कहता है, अवेट अर्थक्वेक एपिसेंटर पार्लियामेंट। राहुल गांधी ने जो पहले बयान दिया था कि भूकंप आएगा, मेरे पास ऐसी जानकारियां हैं, कल उन्होंने जानकारी दी कि मेरे पास करप्शन के सबूत हैं जिससे PM डरे हुए हैं। न भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, सारे अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी के सारे अखबारों ने भी इस बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान की एडिंग है, मोदी का गुब्बारा फूटेगा। BJP के बयानों को भी, जो इसमें सफाई दी गई है BJP की तरफ से, बल्कि पलटवार किया गया है, इसको भी ज़्यादातर अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। दैनिक जागरण अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सेकंड लीड बनाया है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है मुद्दा। मोदी का बयान है कि व्यवस्था को काले धन से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
यानी अखबारों में आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। रूस और चीन के बीच बसा छोटा सा देश मंगोलिया इन दिनों चीन के गुस्से की आंच झेल रहा है। दो बड़े देशों के बीच बसे इस छोटे से देश का रणनीतिक महत्व है, और चीन नहीं चाहता है कि ये मुल्क उसके एहसानों का बोझ उतार फेंके। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के मंगोलिया दौरे से नाराज चीन के निशाने पर भारत भी है, जो जाने अनजाने मंगोलिया का मददगार बनने की फिराक में है। इन सब के बीच सवाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर चीन तिब्बत के मामले पर इतना संवेदनशील क्यों है। इस हफ्ते दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। तिब्बत के मसले पर दुनिया ने चीन को आए दिन अपना गुस्सा निकालते देखा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन से लेकर भारत भी इस भावनाओं के ज्वार को उफनते हुए देखते आए हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला चीन 75 लाख तिब्बती लोगों को लेकर इतना भावुक हो जाता है कि सामने कोई भी हो उसे इसका खामियाजा उठाने की कम से कम धमकी तो दे ही दी जाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर चीन की टेढ़ी नज़र देख चुके हैं। इस बात की कोई आशंका नहीं कि तिब्बत कभी चीन से अलग होने की सोचेगा, तो फिर हर बार तिब्बत को लेकर चीन की तबीयत क्यों उखड़ जाती है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल गोविंद द्विवेदी,
चाइना के लिए 3 मामले बहुत, जिसको कह सकते हैं, या इमोशनल हो जाते हैं। सबसे पहले तिब्बत, ताइवान और साउथ चाइना सी। अभी तिब्बत एक पेचीदा मामला है, क्योंकि तिब्बत कुछ हद तक एक आजाद देश की तरह रह चुके हैं, और अभी पूरी दुनिया ने मान लिया कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि उनका एक अलग पहचान है, चाहे वो चीन का हिस्सा भी है, और उसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोला जाता है, क्योंकि उसका अपना कल्चर है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, जो मेन मुद्दा जहाँ चाइना बहुत ही सेंसिटिव है वो है दलाई लामा, क्योंकि वो समझते हैं कि दलाई लामा जो है वो अलग होना चाहते हैं, तो इसलिए जो भी दलाई लामा से किसी रूप में जब उसका कोई इंटरेक्शन होता है तो वो बहुत ही एक इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता है। वैसे ही वो ताइवान के ऊपर भी, जब भी ताइवान से जैसे अभी अमेरिका के जो होने वाले राष्ट्रपति हैं उनकी बात हुई ताइवान के प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने इसके बहुत अपना नाराजगी जाहिर की, इसलिए एक ये इमोशनल मामला है।
तिब्बत ताइवान की तरह कारोबार और उद्योग का केंद्र नहीं है, लेकिन वहाँ के हर आंगन में संस्कृति के फूल खिलते हैं। दुनिया से अलग पहचान रखने वाले तिब्बत को चीन अपनी नाक समझता है और दलाई लामा की 4 दिन तक मेजबानी करके मंगोलिया ने उसे नाराज कर दिया है। इसके नतीजे में चीन ने सीमा पर टैक्स लगाकर मंगोलिया को सामानों की सप्लाई मुश्किल कर दी है। रूस और चीन से घिरा मंगोलिया इस दिक्कत के लिए तैयार नहीं था। जेएनयू के प्रोफेसर शरद के सोनी ने मंगोलिया पर पीएचडी की है और कई बार वहां जा चुके हैं।
89% of Mongolia's exports and almost 26% of its imports, that is accounted by China. तो आप देखिए कितना बड़ा economic partnership China के साथ है। बिना China के Mongolia कुछ नहीं कर सकता है economically अपने यहाँ। और ये जो अभी जो China ने जो restriction लगाया है, ये in reaction to the visit of Dalai Lama। और ये Mongolia को अभी सहना पड़ेगा। ये तो bilaterally talk करके ही बात को खत्म किया जा सकती है।
मंगोलिया चीन की इस अहमियत को जानता है। दलाई लामा बीते साल भी वहां जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा तय हो जाने से उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस साल अच्छा मौका देखकर जब दलाई लामा मंगोलिया पहुंचे तो वहां उनकी खूब आवभगत हुई। इस देश में बौद्ध लोगों की बहुतायत है और तिब्बती धर्म गुरु उनके लिए पूजनीय है। दलाई लामा की संस्था भी मंगोलिया से ही शुरू हुई थी। सालों पहले जब दलाई लामा चीन से भाग कर आए थे तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में लखन मेहरोत्रा ने उनकी अगवानी की और फिर लंबा समय उनके साथ बिताया। विदेश मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर होने के बाद भी उनका ये संपर्क बना रहा। लखन लाल मेहरोत्रा,
चंगेज खान की जो संतति थी उसमें एक उनके मंगोलिया के एक बड़े प्रतिष्ठित राजा थे अल्ताई खान, उसके बाद में कुबलाई खान आए, तो ये जब दलाई लामा मंगोलिया गए और उनके धर्म को वहाँ की सारी जनता ने स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको ये दलाई लामा का शीर्षक देते हैं जिसके माने होते हैं ओशन ऑफ विजडम। तो विजडम को बौद्ध धर्म में प्रज्ञा कहते हैं, संस्कृत में भी प्रज्ञा कहते हैं, तो वो प्रज्ञा सागर का उनको शीर्षक दे दिया और तब से दलाई लामा को प्रज्ञा सागर या दलाई लामा कहा जाता है। और उन्होंने अपनी इस परंपरा को कि आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद ये दलाई लामा की अपनी बौद्धिक स्थिति बनी, जहां वो जाते हैं उसी के लिए उनका स्वागत होता है।
बीते साल भारत के प्रधानमंत्री ने मंगोलिया का दौरा कर उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि वो तीसरे पड़ोसी के रूप में उसके साथ खड़ा है। $1 अरब की क्रेडिट लाइन और दर्जनों बड़े समझौतों की सौगात ने मंगोलिया की उम्मीदों को भी हवा दी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। दिक्कत बढ़ी तो उसने भारत की तरफ उम्मीद से देखा और मदद के लिए हाथ भी बढ़ गए, लेकिन भारत ने ये जरूर साफ कर दिया कि वो इस विवाद के बीच में कहीं नहीं आएगा। प्रोफेसर शरद के सोनी,
मंगोलियन की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जो थर्ड नेबर पॉलिसी है उसमें इंडिया एक डिक्लेयर्ड थर्ड नेबर है। जो 2011 में मंगोलिया ने जो फॉरेन पॉलिसी रिवाइज किया उसमें इंडिया का नाम डाल दिया गया कि ये हमारा वन ऑफ द थर्ड नेबर्स है, तो उसको तो लेके चलना है भाई। तो ये चीज तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम मंगोलिया से दोस्ती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मदद की अपेक्षा वो रखता ही है। दूसरी बात है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये डिक्लेयर्ड है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप मंगोलिया और इंडिया के बीच, तो इस नाते मंगोलिया जो है सो भरोसा करता है कि इंडिया हमारी मदद करेगा और कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर कोशिश करेगा कि बड़ी कंट्री है तो चलो उससे मदद का गुहार करो। दैट डजंट मीन कि जो आप चाह रहे हैं वही हम करें, लेकिन हाँ ऑफकोर्स करेंगे। चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया का, लेकिन वो दूसरी तरह का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी हम इंटरफेयर करें आता से वो नहीं। मदद करने का मतलब है कि इकोनॉमिकली मदद करें, ये कहा जा रहा है, ये नहीं है कि हम चाइना को फटकार लगाएं। तो इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल जो होगा वो मदद करने की सबसे अच्छा चीज है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि $1 बिलियन जो है एज असिस्टेंस दे रहे हैं मंगोलिया को, तो उस पैसे को मंगोलिया अभी यूज कर सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
भारत कुछ करे उससे पहले ही चीन की सरकारी मीडिया मंगोलिया में उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है। कारोबार और कूटनीति से परे आध्यात्म भी एक ऊर्जा है जो भारत मंगोलिया और तिब्बत को पास लाती है। लखन मेहरोत्रा।
दलाई लामा का जो स्वरूप है वो केवल भौतिक स्वरूप नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप है और उनकी विश्व में प्रतिष्ठा उस आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर ही हुई है और उसका दलाई लामा को अपशब्द कहना, उनका अपमान करना वो उस श्रद्धा के बिल्कुल विपरीत पड़ता। तो अगर वो चीनी लोग ऐसा कहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भारत उन्हीं की भाषा का अनुकरण करे और उन्हीं के विचारों का अनुकरण करे कि वो दलाई लामा के बारे में क्या मानते। हम तो उनकी, वो तो हमारे बड़े प्रतिष्ठित अतिथि हैं भारत में और इसी रूप में हमने उन्हें शुरू से देखा है और उनको हमने राजनीतिक रूप से नहीं देखा है, उनको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देखा है। और सारे भारत में ही नहीं है, भारत में तो एक एक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा रखता है बल्कि विश्व में ही उनका इतना श्रद्धामय स्वरूप सबके सामने आता है कि वो सब उनके सामने झुक जाते हैं और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला कि इतनी विपत्तियों को सहने के बाद भी उनकी आवाज अहिंसा पूर्ण है और वो अहिंसा से ही तिब्बत की समस्याओं का हल करना चाहते हैं।
दलाई लामा की हर गतिविधि पर चौंकने वाला चीन अध्यात्म और संस्कृति की इस ऊर्जा के महत्व को अब तक नजरअंदाज ही करता आया है। चंगेज खान और कुबलई खान का मंगोलिया अपनी मुसीबतों का कोई न कोई हल तो निकाल ही लेगा, लेकिन चीन की ये घुड़कियां उसके कुछ और देशों से जुड़ने की वजह तो बन ही सकती हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
आज की दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब खेल समाचार।
BBC खेल समाचारों के साथ मैं हूँ वैभव दीवान। बैडमिंटन में दुबई में खेली जा रही वर्ल्ड सुपर सीरीज मुकाबले के पहले दौर में कल रात भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची से हुआ। 1 घंटा 3 मिनट चले इस मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद पीवी सिंधु ने खेल में वापसी की और मैच 12-21, 21-8, 21-15 से जीता। आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की सुन यू से होगा। इससे पहले पीवी सिंधु सुन यू से हाल ही में हुए चाइना सुपर सीरीज के फाइनल्स में जीती थी। इन दोनों खिलाड़ियों के खेल में कई समानताएं हैं तो आज का ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है, बता रहे हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना।
दोनों खिलाड़ियों में काफी समानताएं हैं उनके स्टाइल में, उनके खेलने में, क्योंकि दोनों लंबे कद की खिलाड़ी हैं और संजू जो है वो भी काफी अटैकिंग प्लेयर हैं। जब भी उनको मौका मिलता है बहुत ही पहले वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर अटैक करती हैं और पीवी सिंधु की भी ज्यादा यही नीति रहती है। ये मैच भी जो है ये काफी निर्भर करेगा कि दोनों खिलाड़ियों में से कौन अच्छा दमखम का प्रदर्शन करता है। पीवी सिंधु, हमें काफी उम्मीद है कि पीवी सिंधु इस मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा।
वहीं हॉकी में भी आज भारत के लिए अहम दिन है। लखनऊ में चल रहे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। अभी तक के टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। अब क्रिकेट, बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। ये एक डे नाइट मैच होगा, इसे गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए टेस्ट मैच का ये फॉर्मेट नया नहीं है। सुनने में आया है कि कल शाम ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाब रियाज और यासिर शाह के बीच नोकझोंक हो गई। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का कहना है कि ये भिड़ंत तो हुई पर ये सीरियस नहीं थी। अब इसका खेल पर क्या असर पड़ता है पता चलेगा आगे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे में।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। सीरिया के विद्रोहियों का कहना है कि पूर्वी अलेपो में फंसे लोगों को निकालने के लिए नया समझौता हो गया है। हालांकि सरकार के समर्थन वाले लड़ाकों ने कोई समझौता होने से इनकार किया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि चीन ने साउथ चाइना सी के 7 बनावटी टापुओं पर हथियार जमा किए हुए हैं। अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। एक दशक से ज्यादा वक्त में यह दूसरा मौका है जबकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। BBC समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।